नमस्कार, जनसत्ता में सुनिए सुर्खियां, देश दुनिया की बड़ी खबरें। फ्रांस की सरकार ने मंगलवार को घोषणा की कि सुरक्षा कारणों से पर्यटकों को सीन नदी के किनारे पेरिस ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में निःशुल्क शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। नदी के किनारे होने जा रहे पेरिस ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में सुरक्षा कारणों को लेकर पहले ही चिंताएं जताई जा रही हैं। आयोजकों ने पूर्व में 26 जुलाई को 6 लाख से अधिक लोगों के लिए एक भव्य उद्घाटन समारोह की योजना बनाई थी, जिनमें से अधिकांश लोग नदी के किनारे इसे निःशुल्क देख सकते थे, लेकिन सुरक्षा कारणों और साजो सामान संबंधी चिंताओं के कारण सरकार ने आयोजन की योजना में बदलाव किए हैं। इस वर्ष की शुरुआत में दर्शकों की संख्या आधी घटाकर 3 लाख कर दी गई थी। गृह मंत्री गेराल्ड डर्मेनिन ने मंगलवार को कहा कि इसमें से 1,04,000 लोग टिकट लेकर नदी के निचले तटों से, वहीं अन्य 2,22,000 लोग ऊपरी किनारों से आयोजन को निःशुल्क देख सकेंगे। उन्होंने कहा कि जनता को निःशुल्क टिकट पूर्व की भांति पंजीकरण व्यवस्था को नहीं दिए जाएंगे, बल्कि जिन्हें ये आयोजन निःशुल्क दिखाया जाना है उन्हें आमंत्रण भेजा जाएगा। ये पहली बार है कि ओलंपिक का उद्घाटन समारोह स्टेडियम से बाहर आयोजित किया जा रहा है। इसमें कम से कम 160 राष्ट्राध्यक्षों के भाग लेने की उम्मीद है। रूस की विदेशी खुफिया सेवा के प्रमुख ने मंगलवार को कहा कि विदेशी नेता एलेक्सी नवनली की मौत प्राकृतिक कारणों से हुई। खुफिया प्रमुख का यह बयान राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के घोर आलोचक रहे नवलनी के मौत के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठ रहे सवालों को शांत करने के प्रयास के तौर पर देखा जा रहा है। रूस में SVR के नाम से जाने जाने वाली शीर्ष खुफिया एजेंसी विदेशी खुफिया सेवा के निदेशक सर्गेई नारयाशिकिन ने रूस के सरकारी टेलीविजन में प्रसारित एक साक्षात्कार में ये बात कही। उन्होंने कहा, कभी न कभी जीवन का अंत तो होता ही है। नवलनी की मौत प्राकृतिक कारणों से हुई। नवलनी की मौत 16 फरवरी को खार्प शहर के पेनल कॉलोनी नंबर 3 में हुई थी। उन्हें उग्रवाद के जुर्म में 19 वर्ष कैद की सजा सुनाई गई थी। रूसी अधिकारियों ने हालांकि अभी तक नवलनी की मौत के कारणों के बारे में कोई घोषणा नहीं की है, लेकिन पश्चिम के कई नेताओं ने पुतिन पर आरोप लगाए हैं। नवलनी की मां को अपने बेटे का शव मिलने में 8 दिन का इंतजार करना पड़ा। अधिकारियों ने पोस्टमार्टम का हवाला देते हुए शव देने में देरी की, जिससे बेटे की मौत की पीड़ा से गुजर रही मां को वीडियो जारी कर पुतिन से बेटे का शव देने की अपील करनी पड़ी, ताकि वो अपने बेटे का सम्मानपूर्वक अंतिम संस्कार कर सके। शुक्रवार को नवनली का अंतिम संस्कार किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने देश भर के अन्य राज्यों में हुए सुपर ट्यूसडे चुनाव में कई सीट पर जीत हासिल की। सुपर ट्यूसडे के नतीजों के बाद ट्रंप के आखिरी प्रमुख प्रतिद्वंद्वी निकी हेली पर दौड़ से हटने का दबाव बढ़ सकता है। सुपर ट्यूसडे में अलास्का और कैलिफोर्निया से लेकर वर्मोंट और वर्जीनिया तक 16 राज्यों और एक क्षेत्र में चुनाव हुए। इसमें सैकड़ों डेलीगेट्स के मत प्राप्त होते हैं। सुपर ट्यूसडे अमेरिका के राष्ट्रपति पद के चुनावों के चयन के लिए प्राइमरी चुनाव प्रक्रिया का वो दिन होता है जब सबसे अधिक राज्यों में प्राइमरी और कॉकस चुनाव होते हैं। बाइडेन और ट्रंप ने मेन, ओक्लाहोमा, वर्जीनिया, नॉर्थ कैरोलिना और टेनेसी में जीत हासिल की। बाइडेन ने मैसाचुसेट्स, वर्मोंट और आयोवा में डेमोक्रेटिक प्राइमरी चुनावों में भी जीत हासिल की है। राष्ट्रपति पद के प्रबल दावेदारों में शुमार 81 वर्षीय बाइडेन और 77 वर्षीय ट्रंप एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। दोनों नेता अपनी अपनी उम्र को लेकर उठ रहे सवालों और जनता के बीच लोकप्रियता में व्यापक कमी के बावजूद पार्टियों पर अपनी होड़ बनाए हुए हैं। ट्रंप ने मंगलवार को फॉक्स एंड एम्प फ्रेंड्स में कहा था, हमें बाइडेन को हराना होगा, वो यानी बाइडेन इतिहास के सबसे खराब राष्ट्रपति हैं। वहीं बाइडेन ने अपनी 1-2 रेडियो साक्षात्कार में ट्रंप के हमलों का जवाब देते हुए अश्वेत मतदाताओं से मिल रहे समर्थन का जिक्र किया, जिसमें 2020 में उनके गठबंधन को मजबूत बनाने में मदद की थी। बाइडेन ने कहा, अगर हम ये चुनाव हारते हैं तो आपको एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप के शासनकाल में जाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आएं जनसत्ता डॉट